पृष्ठ संख्या 192। जापान का अमेरिका, ब्रिटिश साम्राज्य एवं नीदरलैंड्स के साथ युद्ध। यह बात उत्तरोत्तर स्पष्ट होती गई कि जापान एक ऐसे मार्ग का अनुसरण कर रहा है जिससे ब्रिटिश साम्राज्य, नीदरलैंड्स तथा अमेरिका के साथ उसका युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत होता था। जापान की प्रादेशिक महत्वाकांक्षाएं उसी के एक प्रवक्ता के अनुसार चीन तक ही सीमित न थी। वस्तुतः वे कितने क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था। अपने विस्तार की सीमाओं को उन्होंने काफी संदिग्ध रखा ताकि उन्हें सुविधानुसार आगे पीछे किया जा सके। जापान ने सन 1938 में पेरेसेल्स द्वीपों पर तथा 1939 में हैनान एवं स्प्रैटल द्वीपों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो वस्तुतः आतंक की बात थी, चूंकि इस समय ब्रिटेन यूरोप में जर्मनी के साथ युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ था, जिसमें उसकी पराजय निकट ही प्रतीत होती थी, तथा नीदरलैंड्स और फ्रांस जर्मनी के वशवर्ती हो चुके थे। इसलिए जापान के लिए पूर्वी एशिया तथा ईस्ट इंडीज में इनके प्रदेशों पर आधिपत्य जमाने का बड़ा अच्छा मौका था। इस समय जापान एशिया के देशों को पश्चिम के राष्ट्रों की पराधीनता से मुक्ति प्रदान करने का ढोंग रच सकता था। वह अपने इस अभियान को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, या नहीं, यह संभवतः प्रशांत के पश्चिमी प्रदेशों से उसे मिलने वाली सफलता पर निर्भर था। जापान की इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति में अमेरिका सबसे बड़ी बाधा थी। इस समय विश्व के सभी देश ऐसे मार्ग का अनुसरण कर रहे थे जिन पर यदि वे दृढ़ रहते तो जबरदस्त संघर्ष अवश्यंभावी था। जापान की योजना अमेरिका की उन नीतियों के पूर्णतया विरुद्ध थी जिनके लिए वह गत 50 वर्षों में वचनबद्ध था तथा जिनको वह सिद्धांत रूप में इससे भी अधिक लंबे समय से मानता आया था। इस नीति की जोरदार अभिव्यक्ति चीन द्वारा प्रस्तुत संकटापन्न स्थिति में हुई। मुक्त द्वार नीति अथवा परम मित्र राष्ट्रों के नागरिकों के ही समान उसके नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की नीति के आधार पर अमेरिका ने चीन की स्वतंत्रता एवं प्रादेशिक अखंडता को स्वीकार करने का आग्रह किया। चीन पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से अभेद नीति या मुक्त द्वार नीति के खतरे में पड़ जाने की संभावना थी। इसी प्रकार जापान द्वारा ब्रिटेन, फ्रांस एवं डच अधिकृत प्रदेशों पर अधिकार कर लेने पर इन प्रदेशों में अमेरिकी नागरिकों के व्यापार एवं पूंजी के निवेश संबंधी अधिकारों के छिन जाने की भी संभावना थी। अमेरिकी विदेश सचिव ने इस बात पर जोर देकर कहा कि अमेरिका ने फ्रांस द्वारा जापान प्रदत्त रियायतों को किसी भी तरह से मान्यता नहीं दी थी तथा उसने ब्रिटेन द्वारा बर्मा रोड के बंद किए जाने का भी विरोध किया। जुलाई 1941 में जर्मनी द्वारा नियंत्रित फ्रांसीसी सरकार और जापान के बीच एक समझौता हुआ जिसका तथाकथित उद्देश्य फ्रांस अधिकृत हिंद चीन की सुरक्षा के लिए सैनिक मामलों में सहयोग से कार्य करना था। इस समझौते के द्वारा जापान को इस बात की प्रच्छन्न रूप से अनुमति प्राप्त हो गई थी कि वह उस प्रदेश का उपयोग चीन अथवा ब्रिटेन तथा डच अधिकृत प्रदेशों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कर सकता है। अमेरिका ने चीन को और अधिक सहायता प्रदान कर तथा पूर्वोल्लिखित व्यापारिक कदम उठाकर इसके विरुद्ध अपनी नाराजगी प्रकट की। अमेरिका ने जापान को निर्यात किए जाने वाले माल में अत्यधिक कमी कर दी। इसके अलावा जापान सरकार ने अमेरिका के हिंद चीन को दोनों के हस्तक्षेप से मुक्त राज्य बनाने के प्रस्ताव की भी अवहेलना की। पृष्ठ संख्या 194 कुछ जापानी, जिनमें से कुछ पदाधिकारी भी थे, इस विचार के थे कि अमेरिका को इस बात पर सहमत किया जा सकता है कि वह उनके मार्ग से हट जाए। उनकी यह धारणा थी कि अमेरिका को यह बात अस्पष्टता समझाई जा सकती है कि जापान को अपने इच्छानुसार कार्य करने देने में अंततः उसी का हित है। अनेक लोगों का तो यह दृढ़ विश्वास था कि अमेरिका युद्ध नहीं करेगा। अमेरिका को युद्ध से दूर रखने के लिए अमेरिका में नियुक्त एक के बाद एक कई राजदूतों ने इस दिशा में प्रयत्न किए और अंततः नवंबर 1941 को इस उद्देश्य के लिए कुरुसु को वाशिंगटन भेजा गया। इस समय जिन लोगों के हाथ में जापान का प्रशासन था, वे लोग अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इतने अधिकृत संकल्प थे कि यदि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें अमेरिका से युद्ध भी करना पड़ता तो इसके लिए वे तैयार थे। नवंबर 1941 तक इतनी बात स्पष्ट हो गई थी कि अब युद्ध को रोकना संभव नहीं। 20 नवंबर को जापान सरकार ने कुछ प्रस्ताव सामने रखे जिसमें सुझाव दिया गया था कि दोनों देश दक्षिण पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी प्रशांत प्रदेश में अपनी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोकें तथा जापान अपनी सेनाएं उत्तरी फ्रांसीसी हिंद चीन में वापस लौटा ले। लेकिन इन प्रस्तावों में चीन के मामले में वे किसी भी तरह झुकने को तैयार न थे। इनमें इस बात का प्रयत्न किया गया था कि दोनों सरकारें नीदरलैंड्स इंडीज में उनकी वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए परस्पर सहयोग दें और साथ ही अमेरिकी सरकार इस बात का वचन दे कि वह जापान को आवश्यक मात्रा में खनिज तेल मुहैया करेगा और जापान के साथ अपने संबंध पुनः वैसे ही बनाएगा जैसे अमेरिका में जापान की परिसंपत्तियों को अवरुद्ध करने से पूर्व थे। 26 नवंबर को अमेरिका के विदेश सचिव हल ने जापान के राजदूत नोमुरा को इन प्रस्तावों से संबंधित एक पत्र दिया। पत्र में नम्रतापूर्वक किंतु दृढ़ता से इन प्रस्तावों को मानने की असमर्थता प्रकट की गई थी। उसने इसके बदले एक प्रति प्रस्ताव पेश किया। इनमें ब्रिटिश साम्राज्य, चीन, जापान, नीदरलैंड्स, सोवियत रूस, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों के बीच अनाक्रमण समझौता संपन्न करने का सुझाव दिया गया था। अमेरिका के प्रस्तावों में इस बात की भी व्यवस्था थी कि फ्रांसीसी हिंद चीन की प्रादेशिक अखंडता तथा उस राज्य में व्यापार के लिए मुक्त द्वार नीति को स्वीकार किया जाएगा। चीन तथा हिंद चीन से जापान सभी प्रकार की थल सेना, नौसेना, वायुसेना एवं पुलिस व्यवस्था को हटा लेगा। वह चीन की राष्ट्रवादी सरकार का समर्थन करेगा और चीन में अपने अपरदेशीयता के अधिकारों, उपनिवेशों और अनुज्ञात भूप्रदेशों तथा बॉक्सर समझौते द्वारा प्राप्त अधिकारों का परित्याग कर देगा। इस प्रस्ताव की भूमिका के रूप में जापान और अमेरिका अपनी अपनी नीतियों की घोषणा करेंगे और इसमें उन सिद्धांतों का संकेत मिल जाएगा और इसमें उन सिद्धांतों का संकेत किया जाएगा जो अमेरिकी नीतियों के आधार थे। पृष्ठ संख्या 195। 7 दिसंबर 1941 को जापान के राजदूत नोमुरा ने विदेश सचिव हल को अपनी सरकार की ओर से दिया गया उत्तर सौंप दिया। इसमें अमेरिकी एवं ब्रिटिश सरकारों पर इस बात का आरोप लगाया गया था कि वे जापान एवं चीन के बीच शांति स्थापित करने की जापान की कार्यवाही के मार्ग में रोड़ा अटका रहे हैं। पूर्वी एशिया में स्थिरता लाने के लिए जापान द्वारा किए जाने वाले रचनात्मक प्रयत्नों में हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा नीदरलैंड्स, ईस्ट इंडीज तथा फ्रांसीसी हिंद चीन के सहयोग से सार्वजनिक कल्याण और से सार्वजनिक कल्याण और हित के आदर्श को प्राप्त करने की जापान की महत्वाकांक्षा को निष्फल कर रहे हैं। इसमें अमेरिकी सरकार पर आरोप लगाया गया था कि वह न केवल चीन में अपितु पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी अपने प्रभुत्वपूर्ण स्थिति को और अधिक मजबूत बनाना चाहता है। साथ ही घोषणा की गई थी कि जापान सरकार इस प्रकार की स्थिति को और आगे सहन नहीं कर सकती। अंत में लिखा था कि जापान सरकार का विचार है कि अब और अधिक वार्ता द्वारा किसी प्रकार के समझौते पर पहुंचना असंभव है। ठीक उसी दिन नोमुरा और कुरुसुकी हल के साथ महत्वपूर्ण भेंट से पहले ही जापान ने पर्ल हार्बर में स्थित अमरीकी नौसेना और हवाई द्वीप के मुख्य अमरीकी हवाई अड्डे पर आक्रमण की शुरुआत की। उसी दिन उन्होंने गुआम और फिलीपींस के महत्वपूर्ण केंद्रों पर बमबारी की। फिलीपींस में अमेरिका की प्रभावशाली एवं सशक्त वायुसेना को ध्वस्त किया। शंघाई में स्थित अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश पर कब्जा किया। सिंगापुर पर बम वर्षा की तथा उत्तरी मलाया में अपने सेनाओं को उतारा। जापान सरकार ने साथ ही यह भी घोषणा कर दी कि वह अमेरिका एवं ब्रिटेन के साथ युद्धरत है। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और नीदरलैंड्स इंडीज ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कई वर्षों से विश्व के आकाश में युद्ध की जो घटाएं छा रही थी, उन्होंने अकस्मात ही भयंकर तूफान का रूप धारण कर लिया और अमेरिका को, जो आंशिक रूप से ही मनोवैज्ञानिक एवं सैनिक दृष्टि से युद्ध के लिए तैयार था, द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट लिया गया। जापान के एक प्रवक्ता ने घोषणा की कि इस युद्ध में जापान का उद्देश्य अमेरिका और ब्रिटिश साम्राज्य को पूर्णतः विनष्ट करना है। भविष्य के लिए यह विशेष महत्व की बात थी कि अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के समान यूरोप तथा अटलांटिक के मार्ग से सम्मिलित होने के बजाय प्रशांत के मार्ग से सम्मिलित होने को बाध्य होना पड़ा। प्रशांत प्रदेश तथा सुदूर पूर्व के बाद में अमेरिका का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा तथा जापान के लिए वह जितना उपयोगी सिद्ध हुआ, उसका ज्ञान शायद ही तब किसी को रहा हो। पृष्ठ संख्या 196। पर्ल हार्बर की स्मृति। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था कि 7 दिसंबर जापान के इतिहास में सदा कलंकित रहेगा, लेकिन वस्तुतः वह दिन 7 दिसंबर नहीं बल्कि 8 दिसंबर है। विश्व युद्ध के दौरान प्रत्येक मास की 8वीं तारीख को सरकारी आज्ञप्ति द्वारा जापान के लोगों को इस दिन के गौरव का स्मरण कराया जाता था। जापान के सभी समाचार पत्रों को इस बात के लिए बाधित किया जाता था कि वे प्रति मास मुख्य पृष्ठ पर सम्राट द्वारा घोषित राजाज्ञा के पूर्ण मूल पाठ को उद्धृत करें, जिसमें घोषणा की गई थी कि जापान अमेरिका एवं ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्धरत है। सभी शहरों में इस राजाज्ञा में निहित दैवीय बुद्धि की प्रशंसा में भाषण होते थे। इसका पूर्ण पाठ नीचे प्रस्तुत किया जाता है।